एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है लेकिन शायद उसकी असली कहानी नहीं जानते।
हम बात कर रहे हैं अमेरिका की महामंदी या द ग्रेट डिप्रेशन की, और इसे समझने के लिए हमारे पास है रॉबर्ट एस मैकविलन की एक बहुत ही जबरदस्त किताब द ग्रेट डिप्रेशन।
और ये सिर्फ एक और इतिहास की किताब नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की जासूसी कहानी जैसी है।
जासूसी कहानी? अच्छा।
हाँ, सवाल यह है कि कैसे एक देश जो दुनिया में सबसे अमीर था, जहां लोगों को लगता था कि तरक्की की कोई सीमा ही नहीं है, वो रातों रात भयानक गरीबी और निराशा के गर्त में कैसे डूब गया।
ये किताब उसी कैसे और क्यों की पड़ताल करती है।
बिल्कुल, और शायद कुछ लोग सोचें कि भाई 90 साल पहले अमेरिका में जो हुआ उससे आज हमें क्या लेना देना।
हाँ, ये सवाल तो उठता है।
लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ते हैं ना, तो लगता है जैसे ये आज के बारे में ही बात कर रही है। अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई,
बाजार के अचानक गिरने का डर,
संकट के समय सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं।
तो ये किताब एक तरह से हमें आज की दुनिया को समझने का एक चश्मा देती है।
बहुत सही कहा। तो चलिए इस चश्मे को पहनकर इतिहास के उस तूफानी दौर को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये कहानी हमें सुनाई है, लेखक रॉबर्ट एस मैकविलन।
हाँ, ये मिलसैप्स कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं और इन्हें ग्रेट डिप्रेशन का एक तरह से आप कह सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है।
और उनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ नंबरों और पॉलिसी के इतिहासकार नहीं है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट गिरा या सरकार ने कौन सा कानून पास किया। वो एक सामाजिक इतिहासकार है।
वो जानना चाहते थे कि उस दौर में आम इंसान क्या महसूस कर रहा था, उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था।
हाँ, और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तो कमाल का है। उन्होंने उस जमाने के हजारों खत,
लोगों की पर्सनल डायरियां
और इंटरव्यूज पढ़े। वो जानना चाहते थे कि एक मजदूर जो कल तक अपने परिवार का पेट पाल रहा था, जब उसकी नौकरी चली गई तो उसे कैसी शर्मिंदगी महसूस हुई।
एक किसान जिसकी जमीन छिन गई, उसके दिल पर क्या बीती। यही नजरिया इस किताब को बहुत मानवीय और असरदार बना देता है।
तो किताब की बड़ी तस्वीर क्या है? ये 1929 से 1941 के बीच के अमेरिका की कहानी है।
हाँ, लेकिन इसका मकसद सिर्फ घटनाओं को गिनाना नहीं है। मैकविलन का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था,
बल्कि इसने अमेरिका की आत्मा को, उसके समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया।
और उनका जो सबसे बड़ा और मैं कहूंगा चौंकाने वाला तर्क है वो ये है कि इस तबाही की असली वजह 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं था।
अच्छा,
हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं।
नहीं, वो तो सिर्फ एक लक्षण था, जैसे बुखार। असली बीमारी तो 1920 के दशक में ही पनप रही थी।
और वो बीमारी थी
भयानक आर्थिक असमानता।
मतलब देश में दौलत तो बहुत पैदा हो रही थी, लेकिन वो कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई थी।
बिल्कुल, फैक्ट्रियां सामान बना रही थीं, लेकिन आम लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत ही नहीं थी।
तो पूरी अर्थव्यवस्था एक ऐसे ताश के पत्तों के घर पर खड़ी थी
जिसे बस हवा के एक झोंके का इंतजार था।
और ये किताब हमें उसी ताश के पत्तों के घर के बनने से लेकर उसके ढहने और फिर राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के आने,
हाँ FDR, और उनके न्यू डील के जरिए एक नया मजबूत घर बनाने की कोशिश तक की पूरी यात्रा पर ले जाती है।
ये कहानी है कि कैसे एक संकट ने सरकार की भूमिका को हमेशा के लिए बदल दिया।
तो कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से, जिसे किताब कहती है आपदा के बीज। बाहर से देखने पर तो ये रॉरिंग 20s का जमाना था, जैज म्यूजिक, पार्टियां, गाड़ियां। लगता था जैसे अमेरिका में जश्न का माहौल है।
हाँ, पर मैकविलन दिखाते हैं कि इस जश्न की सतह के नीचे सब कुछ खोखला था,
और इस खोखलेपन की जड़ थी अमीर और गरीब के बीच की खाई, जो इतनी बढ़ चुकी थी कि यकीन करना मुश्किल है।
किताब में एक आंकड़ा है जो दिमाग हिला देता है। 1929 में अमेरिका के सबसे अमीर 0.1% परिवारों की कुल कमाई,
हाँ,
देश के सबसे गरीब 42% परिवारों की कुल कमाई के बराबर थी।
एक मिनट, ये आंकड़ा फिर से दोहराइए। मतलब देश के लगभग आधे लोगों की कुल कमाई से ज्यादा पैसा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास था।
जी हाँ,
ये तो किसी भी वक्त टूटने के लिए तैयार एक सिस्टम लगता है।
बिल्कुल,
अमीर लोग इस पैसे को और पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे,
जिससे एक बुलबुला बन रहा था,
और आम लोग वो अपनी जरूरतों के लिए उधार ले रहे थे, क्रेडिट पर जी रहे थे। पूरी अर्थव्यवस्था ही उधार पर चल रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि बिल चुकाने का वक्त कितनी जल्दी आने वाला है।
और फिर वो वक्त आया, अक्टूबर 1929, स्टॉक मार्केट का बुलबुला फूटा।
ये किताब का अगला हिस्सा है, क्रैश और महामंदी की शुरुआत।
लेकिन जैसा हमने कहा, मैकलवेन साफ करते हैं कि ये बीमारी नहीं थी, ये सिर्फ बीमारी का पहला लक्षण था। असली तबाही तो अब शुरू होनी थी।
और इस दौर में राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हूवर।
हाँ, मैकलवेन उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाते हैं जो अपनी विचारधारा में, आप कह सकते हैं, बुरी तरह फंसा हुआ था।
हूवर का मानना था कि अगर सरकार सीधे लोगों की मदद करेगी
तो लोग आलसी हो जाएंगे,
उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा।
वो कठोर व्यक्तिवाद में यकीन करते थे।
तो उनका आइडिया एक तरह से वही था जो हम आज सुनते हैं, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स।
बिल्कुल बिल्कुल, कि सरकार बड़े कॉरपोरेशनों और अमीरों की मदद करेगी और फिर वो पैसा धीरे धीरे रिस्क कर नीचे आम लोगों तक पहुंचेगा।
जैसे आप पेड़ की चोटी पर पानी डाल रहे हैं इस उम्मीद में कि जड़ों तक पहुंच जाएगा।
हाँ, लेकिन जड़ें तो पहले ही सूख चुकी थीं। ये तरीका बुरी तरह फेल हुआ। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई।
25%, मतलब हर 4 में से एक इंसान के पास काम नहीं था।
सोचिए जरा, देश भर में बैंकों की लाइनें लग गईं, लोग अपनी जमा पूंजी खो रहे थे और इस असफलता के प्रतीक बने हूवर विल्स।
ये क्या थे?
ये गत्ते और टिन के डिब्बों से बनी झुग्गी बस्तियां थीं जो बड़े शहरों के बाहर उगाई थीं।
अच्छा।
बेघर लोगों ने इन बस्तियों का नाम मजाक में राष्ट्रपति हूवर के नाम पर हूवर विल्स रख दिया था।
और वो बोनस आर्मी की घटना, उसने तो सरकार की असंवेदनशीलता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया था।
हाँ, जब पहले विश्व युद्ध के गरीब सैनिकों को उनके ही देश की सेना ने वॉशिंगटन से खदेड़ दिया,
तो देश पूरी तरह निराशा में डूबा हुआ था। लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ चुका था
और इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।
यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, न्यू डील का आगमन।
हाँ, FDR का आना सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। उन्होंने रेडियो पर लोगों से सीधे बात की और कहा, इस देश को सिर्फ एक चीज से डरने की जरूरत है और वो है खुद डर।
उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार उनके साथ है और फिर उन्होंने एक के बाद एक कई प्रयोग शुरू किए,
जैसे कि CCC यानी सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स। इसने लाखों बेरोजगार नौजवानों को पार्कों और जंगलों में काम पर लगा दिया।
उन्हें तनख्वाह मिलती थी जिसका बड़ा हिस्सा वो अपने परिवार को भेजते थे।
तो इससे दो फायदे हुए, नौजवानों को काम मिला और देश की प्राकृतिक धरोहर भी बची।
और एक बहुत बड़ा कदम था FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन।
हाँ, इसने ये गारंटी दी कि अगर बैंक डूब भी गया तो लोगों का एक निश्चित रकम तक का पैसा सुरक्षित रहेगा।
इस एक वादे ने बैंकिंग सिस्टम में लोगों का टूटा हुआ भरोसा वापस लौटा दिया।
बिल्कुल, इन कार्यक्रमों का सबसे बड़ा असर ये था कि लोगों को लगा कि सरकार चुपचाप बैठी ही है, वो कोशिश कर रही है।
इसके बाद आता है दूसरा न्यू डील, जो और भी ज्यादा साहसिक था।
हाँ, इसका मकसद सिर्फ फौरी राहत देना नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का जाल बनाना था।
और इसी दौर में न्यू डील की सबसे बड़ी और स्थायी उपलब्धि सामने आई, 1935 का सोशल सिक्योरिटी एक्ट।
ये एक क्रांतिकारी कदम था। इसने पहली बार अमेरिका में बुजुर्गों के लिए पेंशन
और बेरोजगार लोगों के लिए बीमा की शुरुआत की।
मतलब अगर आपकी नौकरी चली जाए या आप बूढ़े हो जाएं, तो सरकार आपको भूखा मरने नहीं देगी। इसने समाज के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को नए सिरे से परिभाषित किया।
इसी के साथ वैगनर एक्ट ने मजदूरों को पहली बार यूनियन बनाने का कानूनी हक दिया।
और WPA जैसे प्रोग्राम ने तो लाखों लोगों को सड़कें, पुल, स्कूल बनाने के काम में लगाकर सीधे रोजगार दिया।
लेकिन इन बड़ी बड़ी नीतियों के साथ साथ मैकलवेन हमें उस दौर के आम इंसान की जिंदगी की छोटी छोटी कहानियों में भी ले जाते हैं।
बिल्कुल, वो बताते हैं कि कैसे बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। पुरुषों का आत्मसम्मान टूट गया था
क्योंकि वो खुद को परिवार का पेट पालने में नाकाम महसूस कर रहे थे।
परिवारों में तनाव बढ़ रहा था, महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा था, जिससे समाज में उनकी भूमिका भी बदल रही थी।
और वो डस्ट बाउल की कहानी तो दिल दहला देने वाली है।
हाँ, सूखे और धूल के तूफानों ने लाखों किसानों को अपनी जमीनें छोड़कर कैलिफोर्निया की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें ओकीज कहा जाता था।
लेकिन इसी निराशा के बीच लोग एक दूसरे का सहारा भी बन रहे थे। फिल्में और रेडियो उन्हें अपनी मुश्किल भरी जिंदगी से कुछ देर के लिए दूर ले जाते थे।
संगीत लोगों को जोड़ रहा था। ये संकट के समय में इंसान के लचीलेपन की कहानी भी है।
तो इस पूरी कहानी से जो बड़े संदेश निकल कर आते हैं, उनमें से पहला तो यही है कि आर्थिक असमानता एक टाइम बॉम्ब की तरह है।
जब दौलत कुछ ही हाथों में सिमट जाती है तो वह पूरे सिस्टम को अस्थिर कर देती है।
और ये बात आज हमारे देश पे भी कितनी सटीक बैठती है ना?
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है व्यक्तिवाद बनाम समुदाय का संघर्ष।
हाँ, होवर की सोच थी कि हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़े,
जबकि रूजवेल्ट ने कहा कि हम सब इसमें एक साथ हैं और हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा।
महामंदी ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में समाज अकेला नहीं चल सकता, उसे सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत होती है।
एक और बहुत दिलचस्प आइडिया जो माइकल वेन देते हैं वो ये है कि न्यू डील एक रूढ़िवादी क्रांति थी।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, कि जो शख्स सोशल सिक्योरिटी ला रहा है वो रूढ़िवादी कैसे हुआ?
हाँ, लेकिन उनका तर्क है कि उस वक्त दुनिया में फासीवाद और साम्यवाद जैसी चरम विचारधाराएं फैल रही थी।
अच्छा, न्यू डील ने अमेरिकी पूंजीवाद में कुछ जरूरी सुधार करके उसे पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया। उसने सिस्टम को इतना मानवीय बना दिया कि लोगों को उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत महसूस नहीं हुई।
तो एक तरह से उसने पूंजीवाद को बचाया, खत्म नहीं किया।
बिल्कुल। और आखिरी संदेश है सरकार की बदलती भूमिका। इस संकट ने हमेशा के लिए यह तय कर दिया कि नागरिकों को एक न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।
ये कोई खैरात नहीं बल्कि एक स्थिर समाज की जरूरत है।
किताब में कुछ बातें इतनी गहराई से कही गई हैं कि वो हमेशा याद रह जाती हैं। जैसे मैकेल्विन कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक आर्थिक तबाही नहीं थी, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक संकट था
जिसने अमेरिकियों को अपनी प्रगति और सफलता के बारे में अपनी सबसे बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। वाओ,
मतलब ये सिर्फ पैसे का संकट नहीं था, ये अमेरिकन ड्रीम पर भरोसे का संकट था।
लोगों का इस विश्वास से यकीन उठ गया था कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे।
सही। और न्यू डील के बारे में वो एक बहुत संतुलित बात कहते हैं। न्यू डील ने ग्रेट डिप्रेशन को समाप्त नहीं किया, लेकिन इसने अमरीकी लोकतंत्र को बचाया।
इसने दिखाया कि सरकार तानाशाही अपनाए बिना भी लोगों की जरूरतों का जवाब दे सकती है।
और एक बात जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी की सोच को चुनौती देती है, 1930 के दशक की अनोखी बात आर्थिक कठिनाई की गंभीरता नहीं थी, बल्कि ये व्यापक मान्यता थी कि अकेले व्यक्तिगत प्रयास आर्थिक सुरक्षा की गारंटी के लिए अपर्याप्त थे।
मतलब लोगों को समय आ गया था कि ये मेरी नाकामी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है।
बिल्कुल। और अंत में रूजवेल्ट के नेतृत्व पर एक बहुत गहरी बात। रूजवेल्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई खास कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि लोगों का सामूहिक कार्रवाई और लोकतंत्र में विश्वास बहाल करने की उनकी क्षमता थी।
उन्होंने लोगों को नाउम्मीदी से निकालकर उम्मीद दी।
तो इस किताब से आयदम क्या सीख सकते हैं?
मेरे लिए पहला सबक है नेतृत्व का महत्व। एक तरफ हूवर थे जो अपनी विचारधारा से चिपके रहे,
और दूसरी तरफ रूजवेल्ट थे जो सुनने, सीखने और प्रयोग करने को तैयार थे।
संकट के समय हमें ऐसे ही लचीले और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व की जरूरत होती है।
मेरे लिए दूसरा बड़ा सबक है सामाजिक सुरक्षा जाल का मूल्य। सोशल सिक्योरिटी, बेरोजगारी बीमा, ये सब सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करते,
ये पूरी अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता लाते हैं।
हाँ, जब लोगों को पता होता है कि बुरे वक्त में उन्हें सहारा मिलेगा तो वो खर्च करने से डरते नहीं हैं, जिससे बाजार चलता रहता है।
तो ये सिर्फ दया नहीं, एक स्मार्ट आर्थिक नीति है।
बिल्कुल। और तीसरा, विचारधारा की कट्टरता के खतरों को पहचानना।
हूवर की कहानी दिखाती है कि जब हम सच को देखने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो हमारी सोच से मेल नहीं खाता, तो ये कितना विनाशकारी हो सकता है।
दुनिया बदल रही है तो हमें भी अपने विचारों को परखते रहना होगा।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे जहन में जो सबसे बड़ी बात रह गई है वो ये है कि अर्थव्यवस्था कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है,
ये इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है
और इसका मकसद समाज की भलाई करना होना चाहिए। जब ये अपने मकसद से भटक जाती है तो महामंदी जैसी तबाही आती है।
और मेरे लिए सबसे प्रेरक बात है उस दौर के आम लोगों का जज्बा। घनघोर निराशा के बीच भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी,
उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, सहयोग के नए रास्ते खोजे।
ये किताब हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश की आर्थिक नीतियां और उसकी नैतिक आत्मा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।